महापुरुषों के बल पर साधन भजन तेज करना, ये शीर्षक है। सत्संग की बात जो आप लोगों को सुनाई जाती है, उसको यदि आप लोग या अन्य कोई भी भाई काम में लाए तो निश्चित ही कल्याण हो जाता है। अब कोई हमको कहे कि आप निश्चित कल्याण की बात कैसे बोलते हो, भविष्य की बात कैसे बोलते हो, तो ये हम हमारे बल पर थोड़े ही बोलते हैं, ये भगवान के बल पर कहते हैं। भगवान ने कहा है मत कर्म कृत, जो तुम काम करो सिर्फ मेरा समझ के काम करो। घर का छोटे से छोटा काम भी हो वो मेरा समझ के करो, घर का समझ के मत करो। सुबह उठकर झाड़ू फूस निकालना ये मेरा काम है, भोजन बनाना मेरा काम है, अतिथियों को भोजन कराना ये मेरा काम समझ के करो। जो काम करो आप गृहस्थ में, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, जो काम करो उसको मेरा काम समझ के करो और अंदर से मेरे होकर रहो कि मैं तो भगवान का हूं। माताएं बहनें हो तो कह मैं भगवान की हूं, मैं संसार से थोड़े ऊपर ऊपर से संसार के रहो, अंदर से मेरे परायण रहो और मेरी भक्ति करो। संसार में किसी से भी आसक्ति मत रखो और किसी प्राणियों से बैर मत करो, तो भगवान कहते हैं वो मुझे निश्चित प्राप्त होता है। भगवान के वचन मिथ्या थोड़े ही हो सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भगवान के बल पर हम बोल सकते हैं कि निश्चित कल्याण हो सकता है। हमारे पास तो गीता के और भगवान के वचनों के प्रमाण है और वही आपको बोलते हैं, तो भगवान या महापुरुषों के वचनों के बल पर ही हम लोग बोलते हैं, इनका बल झूठा नहीं होता। भगवान ने कहा मन मना भाव, मेरे में ही मन लगाओ, मद भक्त है मेरा भक्त बन जाओ, मद याजी मन मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो तो मुझे प्राप्त हो जाओगे, ये प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं। तो भगवान तो प्रतिज्ञा पूर्वक बात बोलते हैं, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते, तुम जानने लो, योग्य बात को जान लोगे तो तुमको अमृत मिल जाएगा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और शरीरी माने आत्मा और शरीर, इन दोनों के ठीक भेद को समझता है और मूल प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के छूटने के उपाय को जो ज्ञान दृष्टि से देखता है वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान यदि ऐसी बात बोलते हैं तो फिर हम यदि यह कह दें कि ऐसा करने से ऐसा होता है तो फिर कौन सी बड़ी बात है? हमारे पास तो बल भगवान का है, भगवान की प्रतिज्ञा का बल है, उसी के बल पर आपसे कहता हूं। हमारे कथनों के आधार पर आप निश्चय करके चल पड़े, कोई भी बात हम आपसे कहते हैं तो भगवान के वचनों के बल पर कहते हैं, यह हमारे पास बहुत बड़ा बल है। कोई एक बड़ी मील है वो अंग्रेजों के हाथ में है, अंग्रेज लोग कभी सौदा करते हैं तो नटते नहीं है, उनसे कोई सूत या कपड़े का पक्का सौदा हमने कर लिया और उसको हमने आपको बेच दिया और आपने फिर आगे बेच दिया, तो ये सब बात जैसे खातरी रहती है, माने विश्वास के आधार पर रहती है। हमने तो हमारी खातरी अंग्रेजों, हमारी खातरी तो अंग्रेजों की है, माने हमने अंग्रेजों पर विश्वास किया, आपने हम पर किया, और फिर आपने तीसरे पर किया, तीसरे ने आप पर किया, तो उन्होंने जो कपड़ा या सूत हमको बेचा, चाहे मिल फेल हो जाए, लेकिन उसकी बात में कभी गड़बड़ी नहीं हो सकती। यदि उसने हमसे सौदा किया है बेचने के लिए और उसकी मील फैल हो गई, तो वो दूसरे के यहां से लाकर भी हमको देगा। और हमने उनका सौदा लिया और आपको बेच दिया, क्योंकि आपको हमारे पर विश्वास है कि भाई मील चाहे देगी चाहे न देगी, ये तो हमको देंगे ही, ये नहीं दे ऐसी बात है नहीं। और फिर आपको हमसे माल लेने में हिचक नहीं होनी चाहिए, और आपने जिसको आगे दिया है उसको न हमसे मतलब है और न मील वाले से मतलब है, वो आप पर विश्वास करके चलता है। अब इसमें से कोई एक भी लिंक टूट जाए तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन भगवान के वचन है उनमें कहीं गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं है। भगवान के वचन संतों के पास आते हैं, संतों के बाद फिर दूसरे संतों के पास जाते हैं, फिर दूसरे संतों के पास जाते हैं, ऐसे युग युगांतरों तक विश्वास के आधार पर यह बात चलती है। तो भगवान की बात एकदम सोलह आने पक्की है, उसके आधार पर हम आपको बोलते हैं, तो आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। ऐसी बातों के विश्वास करने में लाभ ही लाभ है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, इस गीता प्रेस के संबंध में मैं अधिकारियों को कोई ऑर्डर दे दूं कि आपको ये काम ऐसे करना है, तो अधिकारियों को उस काम में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी काम करोगे तो हमारे ऑर्डर से कर रहे हो, तो आपको क्या चिंता है। यदि कोई काम बिगड़ेगा, गड़बड़ होगी, तो हमारे पर आएगी। हम आपको तो कहने से रहे कि ऐसा क्यों कर दिया, आप तो कह दोगे कि आपने ऑर्डर दिया। यदि गड़बड़ हो गया तो आप तो एकदम निर्भय है, और निर्भय रहना चाहिए। किसी भी मनुष्य को इस प्रकार से यदि किसी का आधार मिल जाए, सहारा मिल जाए, तो उसमें धीरता, वीरता, गंभीरता सब बात आ जाती है। जैसे हम लोग गीता के आधार पर एकदम निश्चित बात बोल देते हैं, तो हम ये मन में सोचते हैं कि भगवान के वचन है ये, किसी और के वचन थोड़े ही, हमारे वचन थोड़े ही, हमारे कथन तो मिथ्या हो सकता है, भगवान का थोड़ा ही होगा। भगवान महाभारत के द्यूत पर्व में विलाप करती हुई द्रौपदी से कहते हैं कि ए द्रौपदी, तू विलाप मत कर, मेरे कहने से तू विलाप मत कर, तू चिंता मत कर। द्रौपदी भगवान के ऐसे आश्वासन के और धीरज के वचनों को सुनकर और ज्यादा विलाप करने लगी, क्योंकि द्रौपदी का भगवान में अपनापन था। भगवान ने कहा कि देख द्रौपदी, सभा में जिन्होंने तुझे अपमानित किया है वो निश्चित मारे जाएंगे, चाहे समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग कर दे, चाहे आकाश टूट जाए, ये असंभव बातें भले ही हो जाए, पर देख द्रौपदी, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होंगे। एक बात है, यदि कर्ण हमारी बात में आ जाएगा, हमारी बात मान लेगा, तो उस हालत में वो बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते। कर्ण को मैं कहूं कि कर्ण तू कौरवों का साथ छोड़ दे, और उस समय कर्ण यदि उनका साथ छोड़ करके अपने पक्ष में आ जाए, तब तो वो नहीं मरेंगे, तब तो मैं कह नहीं सकता हूं, नहीं तो निश्चित मरेंगे। द्रौपदी को भगवान के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। भगवान की बात तो है ही अलग, भक्तों की तरफ भी विचार करके देखो। हिरण्यकश्यप ने शंडामर्क को आज्ञा दी कि तुम प्रह्लाद को मार दो। शंडामर्क जो उनके गुरुजी के पुत्र थे, उनको कहा कि तुम प्रह्लाद को मार डालो। तो शंडामर्क ने प्रह्लाद को मारने के लिए मंत्रों से कृत्या पैदा की, उसको हुक्म दिया कि तुम प्रह्लाद को मार डालो। प्रह्लाद की रक्षा सुदर्शन चक्र करता था। वो कृत्या राक्षसी प्रह्लाद को मारने के लिए दौड़ी तो वो चक्र सामने आ गया और कृत्या को मार डाला। उसके बाद गुरुजी के दोनों पुत्रों को भी सुदर्शन चक्र ने मार डाला। जब वो मर गए तो प्रह्लाद जी को विचार आया कि अरे मेरे कारण से ये गुरु के पुत्र मारे गए, बड़ा अनर्थ हो गया। दुनिया में लोग मर्यादा छोड़ देंगे, लोग कहेंगे कि देखो प्रह्लाद के गुरु के पुत्र थे, वो प्रह्लाद के कारण से मारे गए। तो प्रह्लाद के मन में बड़ी चिंता हुई। वे मरे हुए गुरु पुत्रों के पास गए और वहां जाकर वे अपने हृदय से भगवान से आर्तनाद करने लगे। हे भगवान, यदि गुरु पुत्रों के साथ मेरा तनिक भी द्वेष भाव नहीं है तो ये वचन सत्य है तो ये जीवित हो जाए। तो प्रह्लाद की हृदय की निर्मलता से और उसके सत्य के प्रभाव से मरे हुए गुरु पुत्र जीवित हो गए। फिर भगवान के वचन सत्य हो तो इसमें क्या कहना है। महाभारत के अश्वमेध पर्व में लिखा है कि पांडव लोग अश्वमेध यज्ञ के लिए धन लाने उत्तराखंड के पहाड़ों में गए थे और पीछे से उत्तरा का मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। उसी दिन भगवान द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर पहुंच गए थे। कुंती और उत्तरा के अनुरोध और प्रार्थना करने पर भगवान ने मरे हुए पुत्र को देखकर कहा, यदि मैं सत्य का पान करता हूं तो मेरे सत्य के प्रभाव से ये बालक जीवित हो जाए। तो वो छोटा सा बालक चंचलता करने लगा, जीवित हो गया। तो ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विषय में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विषय में सुनी जाती है, उन्होंने मरे हुए को जिला दिया। किसी पतिव्रता स्त्री का पति मर गया, वह 16 श्रृंगार करके और उसके साथ श्मशान भूमि की ओर जा रही थी। उधर से तुलसीदास जी महाराज पधार रहे थे तो संतों को देख करके उसने बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उसके सुहाग के चिन्हों को देखा तो समझा कि कोई सुहागिनी है, आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटा, तुम्हारा सुहाग सदा कायम रहे। तुलसी आवत देख के सती नवाया शीश, ये चुड़ला अविचल रहे निश्चय विश्वाविश। ये चुड़ला तेरा अविचल रहे। तुलसीदास जी को आते देखकर सती ने जब मस्तक नवाया, आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा सुहाग निश्चय अमर रहे। उसने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आप तो सुहाग की बात करते हो, ये मेरे पति की यात्रा है, मैं तो अब पति के साथ सती होने जा रही हूं, श्मशान में जा रही हूं, आपके इन वचनों का क्या होगा। तुलसीदास जी ने मन में विचार किया कि अरे जब से हो संभाला तब से ऐसी गलती कभी हुई नहीं है, बड़ी भारी गलती हो गई। भगवान के विधान में हमने बिना चाहे हाथ डाल दिया, अब क्या करें। तुलसी मुआ मंगाए के तुलसीदास जी ने कहा लाओ मुर्दा इधर लाओ। तुलसी मुआ मंगाए के सिर पर मेरा हाथ, हम तो कछु जाने नहीं तुम जानो रघुनाथ। तुलसीदास जी ने मुर्दे को मंगाकर उसके मस्तक पर हाथ रख दिया और बोले मैंने तो बिना सोचे समझे कह दिया महाराज, अब हम तो कुछ जानते नहीं है, अब आप जानो और आपका काम जाने। वो मुर्दा आंख खोल करके बैठा और कहा ये क्या हो रहा है, मुझे मशान में कैसे ले जा रहे हो। तो तुलसीदास जी के चरणों में पटक दिया कि तुलसीदास जी महाराज की कृपा। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। तो तुलसीदास जी एक महापुरुष थे, महापुरुष के वचनों को भगवान को सत्य करना पड़ता है, फिर भगवान के वचन सत्य हो तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। गीता तो भगवान के वचनों का सबसे बड़ा प्रमाण है, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि भगवान के वचन मिथ्या नहीं होते। बताया ना, एक महात्मा के वचन मिथ्या नहीं होते, भगवान के कैसे होंगे। भगवान के वचनों पर विश्वास और श्रद्धा कर लेने पर मन में खात्री हो जाती है, खात्री माने विश्वास हो जाता है और मन में बल आता है, फिर उसके लिए साधन करना कठिन नहीं है। आजकल साधन में कठिनता क्यों है कि भीतर में भगवान के प्रति विश्वास कम है, नहीं के बराबर है, और साधन को करने में ज्यादा हम शक्ति लगाते हैं, भगवान में विश्वास की तरफ शक्ति लगाओ। हम लोगों को निश्चय ही विश्वास करना चाहिए क्या कि भगवान है, दूसरा भगवान मिलते हैं, भगवान मिले हैं और हमको भी भगवान मिलेंगे। ये चार बातों पर विश्वास करना चाहिए, भगवान है, भगवान के मिलने का तरीका, भगवान मिलते हैं और भगवान मिले भी हैं और मुझको अवश्य मिलेंगे, इन चार बात पर विश्वास के साथ साधन भजन करना चाहिए। अपने आप धीरता वीरता निर्भयता सब चीज आ जाएगी। अरे भगवान की बात तो दूर रही, हम किसी एक महात्मा पर भी विश्वास कर लेवे कि हम इस महात्मा के निकट हैं, हमारे ऊपर काम क्रोध लोभ आ नहीं सकते हैं, हमारे में कोई विकार आ नहीं सकता है, क्योंकि महात्मा की हमारे ऊपर दया है। देखो आपकी बात आप जानो, लेकिन ये विश्वास बहुत दामी चीज है, आपने इस इतनी दामी चीज को कहां लगा रखा है। इस विश्वास को धन पर लगा दिया, परिवार पर लगा दिया, मान बड़ाई पर लगा दिया, नाशवान जगत में आपने विश्वास को फेंक दिया। ये विश्वास तो भगवान पर और महात्माओं पर करना चाहिए था। इसी कारण से आपके अंदर छिपी हुई जो देवी संपदा है वो प्रकट नहीं हो रही है और साधन करना कठिन हो रहा है और दुर्गुण दुराचार बढ़ते जा रहे हैं। ये संसार सच्चा दिखता है, ये माइक संसार है ये भी सत्या दिखता है, एक विश्वास के बल पर ही। तो एक विश्वास के आधार पर झूठा दुख देने वाला संसार सच्चा दिखता है, सुखदायी दिखता है। जिसको जिस समय सपना आता है उस समय उसको वो एकदम सच्चा और प्रत्यक्ष सत्य मानता है, आंखें खुल जाती है तब वो समझता है कि अरे ये तो सपना था। किंतु जिस समय सपना आता है उसमें तो वो साफ प्रत्यक्ष सत्य मालूम दिखती है, उसकी भावना की तो दृढ़ता है, संकल्प की तो दृढ़ता है, और वह सपने में क्या चीज है। इसी प्रकार ये संसार वर्तमान में जागृत अवस्था में हमको जो सत्य दिखता है, इसके लिए भी ज्ञानी महात्मा लोग कहते हैं कि अरे भाई ये सब माना हुआ सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। इसलिए जो बात आप लोगों को कही जाती है वो गीता शास्त्र के आधार पर कही जाती है, भगवान के वचन और महापुरुषों के वचनों के आधार पर कही जाती है। आप चलो तो आपका कल्याण, मैं चलूं तो मेरा कल्याण, दृढ़ता पूर्वक कह सकते हैं, गारंटी दी जा सकती है कि भगवान के वचनों का पालन करने पर निश्चित कल्याण होता है। किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि कोई आदमी मेरे चरित्र का, मेरे कर्मों का अनुकरण करे तो उसका उद्धार हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे सब आचरण सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। हाँ इतना है, हमारे व्यवहार में जो बात आपको अच्छी मालूम दे उसका आप आचरण कर सकते हो, और जो बात आपको बुरी मालूम दे उसका आचरण छोड़ सकते हो, उसका आचरण नहीं करो, ऐसा चलना चाहिए। भगवान में तो ये दो बात होती नहीं, भगवान की आज्ञा के पालन से उद्धार ही उद्धार है, उसमें तो कहना ही क्या है। ईश्वर के तो दर्शन भाषण चिंतन से कल्याण होता है, परंतु हम कहते हैं महापुरुषों के संभाषण से, दर्शन से, चिंतन से भी कल्याण होता है। अच्छे पुरुषों की दृष्टि में हम अच्छे हैं, महापुरुषों की महापुरुषों के ऊपर हमारी छाप है कि भाई ये आदमी सच्चा है, ये आदमी श्रेष्ठ है, तो वहां हमारी इज्जत है, भगवान के धाम में हमारी इज्जत है। जैसे कोई आदमी, करोड़पति आदमी बाजार में जाए, उसके पास जेब में रुपया नहीं है, लेकिन उसको माल पसंद आ गया, पैसा जेब में तो है वो नहीं, माल पसंद आ गया, माल पसंद आ गया, और वो वहां पर लाखों का माल लेना चाहता है, जेब में तो पैसा नहीं है, लेकिन उस समय उसके पास चेकबुक है, चेकबुक पर वो साइन करके लाख रुपए का चेक दे देता है, तो उस दुकानदार को विश्वास हो जाता है कि नहीं, बैंक का चेक दे रहा है तो जरूर ये पैसे वाला आदमी है, क्योंकि इसकी बैंक में इज्जत है, बाजार में तो एक भी रुपया नहीं है, लेकिन उसके हृदय में असर पड़ता है, दुकानदार के हृदय में, कि देखो लाख रुपए, कितने लाख रुपए की उस समय की बात है, यहां से 70-80 वर्ष पहले की बात है, तो लाख रुपया दे दिया हमको। तो ऐसे ही जो जिस महापुरुष के हृदय में हमारी छाप है, ये आदमी अच्छा है, ये श्रेष्ठ है, साधन भजन करने वाला है, तो उस महापुरुष की दृष्टि में जब इज्जत हो गई तो भगवान के धाम में उसकी इज्जत हो गई। जैसे दुकानदार के सामने वो बहुत बड़ा करोड़पति है तो बैंक में तो उसका चेक जाएगा ही, तो बैंक में तो चेक उसका साफ हो ही जाएगा। इसलिए अच्छे पुरुषों के सम्मुख रहो और अच्छे होकर रहो। ऐसे रहने से एक लाभ और है, अच्छे पुरुषों के पास आप रहोगे, हमारे अंदर की जो बुराई है वो बुराई टिक नहीं सकती। काग भुसुंड जी का जो आश्रम है, बताया जाता है कि वहां योजन भर भगवान की माया व्याप्ति नहीं है, उत्तरकांड में आया है। फिर माया के विकारों की बात ही नहीं है, माया ही नहीं है तो फिर माया का विकार कैसे आएगा। जो कोई वहां जाता था उसके दुर्गुण दुराचार वैसे ही छूट जाते थे जैसे मंदिर में जाने से पहले आदमी स्वाभाविक ही जूती उतार करके जाता है। जूते उतार दिया भाई, अब मंदिर में दर्शन करने आने, जूता वहीं खोल दिया। ऐसे ही माया का त्याग हो जाता है। छोटा बच्चा है और उसको कुत्ते का या बिल्ली का भय लगता है तो दौड़कर मां की गोद में आकर बैठता है और बैठते एकदम निर्भय हो जाता है। इसी प्रकार हमको भी संसार से कहीं डर लगे, काम क्रोध लोभ आदि कुत्ते हमारे पीछे भागे, तो अपने मन से दौड़ करके भगवान की गोद में बैठ जाओ, निर्भयता आ जाएगी, क्योंकि भगवान तो सब जगह मौजूद है। सुना जाता है मार्कंडेय ऋषि की आयु समाप्त तो हो गई, यमराज जी आए, मार्कंडेय जी के प्राणों को यूं निकालने लगे तो मार्कंडेय जी घबरा गए। वहां भगवान शंकर जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति को पकड़ लिया, हे शिव हे शिव बचाओ बचाओ। उस मूर्ति में से शिव भगवान प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर के यमराज जी के पीछे दौड़े। यमराज जी कहने लगा, महाराज मेरा क्या कसूर है? अरे मेरा भक्त है, तुम इसके प्राण निकालते हो और उल्टा मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या कसूर है? महाराज इसकी आयु पूरी हो गई और जब उसका विधान है कि आयु पूरी होती है तो यहां से जाना ही पड़ता है, तो मैं तो आपकी आज्ञा का ही तो पालन कर रहा हूं। महाराज आपकी तो बनाई हुई ये आज्ञा है, तो मैं तो आपका सेवक हूं, इसलिए इसकी आयु पूरी होने पर इसको ले जा रहा हूं। शंकर भगवान, नहीं, इसकी आयु समाप्त कहां हुई? बोला, महाराज आज ही के दिन इसकी अवधि थी, इसीलिए तो मैं आया हूं। आज के दिन? हां महाराज, ये कौन से कल्प का दिन है कि आज का दिन है? अरे हम पूछते हैं कल्प कौन सा है, कल्प कौन सा है, क्योंकि ये दिन तो रोज आता है, ये आज है, ये आज का तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? तो उसकी आंख खुली, आंख खुल करके यमराज जी ने देखा कि ओहो अभी तो महाराज कई कल्प बाकी है, तो ठीक है कई कल्प के बाद ले जाना, अभी क्यों ले जाते हो? माने भगवान शंकर ने क्षण भर में उसके कल्प बदल दिए, आयु बदल दी। यमराज जी ने कह दिया, महाराज मेरा कसूर माफ करो। तो भगवान शिव की मूर्ति की शरण सच्चे मन से मार्कंडेय जी ने ली, तो यमराज जी उसको मार नहीं सके और यमराज जी के पास जो कानून था वो कानून धरा ही रह गया और कई कल्पों की आयु बढ़ गई। अरे भगवान की साक्षात शरण लेने से और काम क्रोध लोभ आदि यमराज से डरते हुए यदि हम भगवान की शरण लें तो उस समय भगवान हमारी कैसी रक्षा कर सकते हैं? काम क्रोध लोभ आदि को यमराज से बढ़कर भयावह समझना चाहिए। सज्जनों, हम लोग किस काम के लिए आए हैं इसके ऊपर जरा ख्याल तो करो, इसके लिए जरा सोचो तो सही। ये भगवान ने मानव शरीर हमको क्यों दिया है? ये पशुओं के समान खाने पीने सोने ऐश आराम के भोग विलास के लिए नहीं दिया है, ये बड़ी भारी दया करके भगवान ने मौका दिया है। ऐसे मौके को अपने आत्मा के उद्धार के लिए उपयोग करना चाहिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप ईमानदारी से सोचो, यदि अकस्मात हमारा शरीर चला जाए पर कब हमको मानव शरीर मिलेगा, कोई पता है क्या? बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, इस नुकसान की तरफ ध्यान दो, साधन भजन को बढ़ाओ, इसमें ढिलाई मत रखो। आप हरदम दुनिया के कामों का ही संकल्प रखते हो, ये कोई आपके काम नहीं आएंगे। यदि आज आपकी मृत्यु हो जाए तो हम मना नहीं कर सकते और मृत्यु का भरोसा नहीं कि किस समय आ जाए, तो क्या आपके पास छूटने का कोई उपाय है? बस अभी आप बड़े सुरक्षित हो, जब तक मृत्यु दूर है और शरीर में प्राण है, यही मौका है अपना कार्य सिद्धि करने का। जरा सा भी विलंब हो जाएगा तो बड़ी भारी मूर्खता होगी। एक एक क्षण बीतता जा रहा है, जैसे जैसे क्षण बीतता जाता है वैसे वैसे हमारी उन्नति होनी चाहिए। अरे अपनी उन्नति करके क्षण बिताएं तो कोई हर्जा नहीं, समय घड़ी की सुई की तरह ठहरता नहीं है, इसी प्रकार हमारे साधन का प्रवाह सुई के समान चलना चाहिए। घड़ी में सुई एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती है, यदि एक क्षण भी व्यर्थ बीत जाए तो जवान बेटा मरे इतना दुख करना चाहिए? सच्चे दिल से पश्चाताप करना चाहिए, ऐसी भूल नहीं हो। सज्जनों, यदि हम अपना आत्मा के उद्धार का काम जिसके लिए मानव शरीर मिला है वो बना कर लेते हैं, कर लेते हैं, फिर संसार में बात करो, संसार का काम करो, कोई हर्जा नहीं है। ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। दूसरी योनियों में कल्याण असंभव है। जब मृत्यु आकर प्राप्त हो जाएगी तो हम आज से कल भी नहीं कर सकेंगे कि ए मृत्यु आज आज ठहर जाओ, तुम कल आ जाना, तुम हमारे घर में ही रह जाओ और कल हमको ले जाना। ऐसी मृत्यु मानने वाली नहीं है। जो ही मृत्यु आएगी वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगी, कभी आपको छोड़ेगी नहीं, ले ही जाएगी। उसी समय जाना होगा, उस समय पश्चाताप करते रहो, रोते रहो। उस समय रोने से क्या फायदा है? जाता है जो कुछ करना हो तो ये पहले ही कर लेना चाहिए। इसलिए समझना चाहिए कि भाई आज का दिन मिल गया तो रात निकलनी मुश्किल है। इतने डरते डरते रहो संसार में, रात निकल गई तो अरे आज का दिन निकलना मुश्किल है। मृत्यु को आप अपने पास में देखो, अत्यंत निकट देखो। जिसकी साधना के लिए बहुत उत्कृष्ट चेष्टा होती है वो हरदम मृत्यु को अपने पास में देखता है। जैसे एक पिंजरे में शेर है और वहीं पर पास में एक बकरी है, उसके सामने खूब आप चारा रखो, खाने के लिए चीज रखो और वो सिंह को देखती रहती है, सिंह दहाड़ता है। वो पिंजरे में बंद है लेकिन बकरी उस चारे को क्या आराम से खा सकती है? भूख लगी हुई है पर नहीं खाए, सिंह को देख के डरती रहती है। ऐसे ही आप ये समझो कि मृत्यु रूपी सिंह आपके पास में खड़ा खड़ा आपको दहाड़ दहाड़ करके कह रहा है, आज का दिन बीत गया, आज का दिन बीत गया। ये आपकी स्त्री, आपका पुत्र, आपका भाई, आपका शरीर, आपका मकान, आपका दुकान, आपका व्यापार, ये आपके किसी काम में नहीं आएगा। मृत्यु के बाद इन सब का आपको ज्ञान तक नहीं रहेगा। जैसे स्वप्न से जागने के बाद आपसे स्वप्न के विषय में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? स्वप्न आया होगा तो भाई आया होगा, तुम भूल गए। ऐसे ही सब चीजों को आप मृत्यु के बाद भूल जाओगे। इसलिए आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम बार बार चेष्टा करके बोलते हैं। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर आपको इस संसार में कोई सार मालूम नहीं देगा। जैसे सपने के कुटुंब से, रुपए से, भोगों से, पदार्थों से आपका संबंध नहीं है, इसी प्रकार सज्जनों विवेक दृष्टि से देखो, संतों की दृष्टि से देखो, महात्माओं की दृष्टि से देखो, इस संसार से हमारा अभी भी कोई संबंध नहीं है। इसलिए पैसे का लोभ होता है, भोगों की इच्छा होती है, इनके द्वारा आप कर्तव्य का उल्लंघन करते हो, ये बड़ा भारी संकट है। जिस काम के लिए शरीर मिला उस काम को तो भुला दिया और नए नए प्रपंच में फंस गए। जिस काम के लिए मिला उसी काम में लगाना चाहिए। यदि लगाने में विलंब हो रहा है तो ये बड़ा भारी नुकसान है। इस नुकसान को कौन पूरा करेगा? कोई नहीं कर सकता। रुपए का नुकसान पूरा हो सकता है, किसी की स्त्री मर जाए तो वो दूसरा विवाह कर सकता है, परंतु ये जो हमारा नुकसान हो रहा है इसको किसी भी प्रकार से आप पूरा नहीं कर सकते। और ये नुकसान आगे जाकर, अभी तो आपको नहीं दिखता है पर आगे जाकर ये भयंकर रूप धारण करेगा और सर्वनाश कर डालेगा। इसको आप अच्छी तरह से समझिए। आप अपने समय को व्यर्थ मत गमाओ, उत्तम से उत्तम, दामी से दामी काम में अपना समय लगाओ। सबसे बढ़कर उच्च कोटि का काम भगवान का भजन करना है, भगवान में श्रद्धा प्रेम रखना है। निष्काम भाव से भगवान में प्रेम करो, आपके केवल भगवान ही है और कोई आपका नहीं है। ऐसा मौका परमात्मा की प्राप्ति से, ऐसा मौका पाकर परमात्मा की प्राप्ति से हम वंचित रह जाए, ये हमारे लिए बड़े दुख की और शोक की बात है, लाज की बात है। मरना तो पड़ेगा, परंतु लाजवान माने लाज में, शर्म के अंदर मरोगे, दुख में मरोगे, शोक में मरोगे, तो क्या फायदा। आनंद के साथ जाओ। रज्जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत। यदि खेत में फसल हो गई, अब यदि फसल लेने के बाद खेत सूख जाता है तो वो खेत अच्छा ही माना जाता है। ऐसे ही भगवान की प्राप्ति करते करते हम मर गए तो हमारी मृत्यु भी बहुत सुखदायी होगी। आनंद आनंद आनंद, कितनी बढ़िया बात है।